الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم معزز خواتین و حضرات، ماہانہ جوڑ کے سلسلے میں آج ہم یہاں پر جمع ہیں۔ آج کے بیان میں جس موضوع پر گفتگو ہوگی وہ موضوع ہے حقوق زوجین۔ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھنا ہے کہ حقوق زوجین کہتے کس کو ہیں۔ ابھی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر سربراہ بنایا ہے۔ عورت اگر بیٹی کی حیثیت سے ہے تو باپ اس کا سربراہ ہے، اگر بہن ہے تو اس کا بڑا بھائی اس کا سربراہ ہے، اگر بیوی ہے تو شوہر اس کا سربراہ ہے۔ جب ازدواجی رشتے میں مرد و عورت منسلک ہوتے ہیں تو شریعت کی طرف سے مرد کے ذمہ کچھ حقوق ہوتے ہیں اور اسی طرح عورت کے ذمہ کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ اپنے اپنے حقوق کو ادا کرنا دونوں کے لیے لازم ہوتا ہے، ان کو حقوق الزوجین کہتے ہیں۔ اور ان دونوں کے جو حقوق ہیں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے حقوق کو متعین فرمایا ہے۔ مرد کے ذمہ جو حقوق ہیں ان کا بھی تعین ہے اور عورتوں کے ذمہ جو حقوق ہیں ان کا تعین بھی کیا گیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، عورتوں پر ہم نے مردوں کو قوام بنایا ہے۔ قوام کا معنی ہے سربراہ بنایا ہے، سرپرست بنایا ہے، امیر بنایا ہے۔ اس کی ایک وجہ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، نان نفقہ ان کے ذمہ ہے، اس لیے وہ سربراہ ہیں اور سرپرست ہیں۔ عورتوں کو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے بوجھ زیادہ نہیں ڈالا ہے، زیادہ بوجھ اللہ تعالیٰ نے مردوں پر ڈالا ہے۔ جہاد کی ذمہ داری مردوں کی ہے، جماعت کی ذمہ داری مردوں پر ہے، وہ مسجد میں جا کر باجماعت نماز پڑھیں گے، باہر سے کما کر لانا یہ مردوں کی ذمہ داری ہے۔ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے آزاد کیا ہے۔ اور ایک وجہ دوسری آیت میں یہ بیان فرمائی کہ وللرجال علیہن درجہ، عورتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ایک درجہ دیا ہے، واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ حکمتوں والے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کس کو کس پر اللہ نے کیوں ترجیح دی ہے اور کیوں اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ دوسرے کو جو ہے وہ زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے۔ جسمانی طور پر، ذہنی طور پر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کمزور پیدا کیا، کسی کو طاقتور پیدا کیا؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، واللہ عزیز حکیم، اللہ حکمتوں والے ہیں، اور اللہ کی حکمتوں کو جاننا اور ان کے خیال کرنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اللہ نے بس جیسے پیدا کیا جو حکم دیا ہم نے اس کو ماننا ہے۔ تو فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ عورتوں پر مردوں کو سربراہ بنایا۔ اب عورتوں کے ذمہ کچھ حقوق ہیں کہ جو مردوں کے ہیں وہ پورے کرنے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میری پھوپھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور کسی کام سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا وہ کام کر دیا۔ بعد میں آپ نے پوچھا کہ تمہاری شادی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں میری شادی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے بس میں جتنا ہوتا ہے، ایک انسان جتنی خدمت کر سکتا ہے، جتنی اطاعت کر سکتا ہے، اتنی اطاعت میں ان کی کرتی ہوں، ان کی خدمت بھی کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فنظری، دیکھ لو، ہوا جنتوں کے و نہ روکے، وہ تیری جنت بھی ہے تیرا شوہر اور وہ تیرے لیے دوزخ بھی ہے۔ اگر اس کی اطاعت گزاری کرو گی اور اس کی خدمت کرو گی تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر اللہ نہ کرے تم نے اس کی نافرمانی کی اور اس کو تنگ کیا، اس کو پریشان کیا، وہ پھر تمہارے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا عورت کے لیے جنت میں جانا بہت آسان ہے، رمضان کے روزے رکھے، پانچ وقت پابندی سے نماز پڑھے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اور جنت کے جس دروازے سے چاہے اس کی مرضی ہے وہ داخل ہو جائے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ کتنا آسان کام ہے عورت کے لیے، رمضان کے روزے رکھے اور پانچ وقت پابندی سے نماز پڑھے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، جس دروازے سے مرضی ہے داخل ہو جائے۔ اور جو عورت اپنے شوہر کو ناراض کرتی ہے، اس کی اطاعت گزاری نہیں کرتی، اور سب سے بڑی اطاعت جب وہ اپنی ضرورت کے لیے اس کو بلاتا ہے تو وہ اس کے پاس نہیں آتی اور اس کو تنگ کرتی ہے، آپ نے فرمایا کہ اسی حال میں اس کا شوہر اگر سو جاتا ہے رات کو، پوری رات فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں اور اللہ بھی اس پر ناراض رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے شوہر کو راضی کر لے، پھر اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ راضی ہوتے ہیں اور فرشتے بھی اپنی لعنت بند کرتے ہیں۔ ان باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ شوہر کے جو حقوق ہیں ان کو الفاظ میں بیان کرنا بڑا مشکل ہے۔ کچھ انصاری لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا اونٹ تھا، پورے باغ کے لیے ایک ہی اونٹ تھا، اور وہ اونٹ ہمارے اس کھیت کو پانی پلانے کے لیے راہٹ کے ساتھ ہم اس کو جوتتے تھے اور وہ راہٹ کے ذریعے پورے کھیت کو اور پورے باغ کو پانی دیتا تھا، اور وہ اچانک اس کی طبیعت میں بغاوت آ گئی، وہ بدک گیا اور باغ کے اندر کسی انسان کو داخل نہیں ہونے دے، جو بھی جاتا ہے اس کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ تو ہم بڑے پریشان ہیں، ہمارے کھیت سوکھ گئے ہیں اور کھانے پینے کی اشیاء وہ کم ہو گئی ہیں، تو آپ مہربانی فرمائیں، آپ تشریف لائیں اور اس اونٹ کے ساتھ کچھ کریں تاکہ ہماری پریشانی ختم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے، باغ میں داخل ہوئے تو اونٹ بھاگ کر آپ کی طرف آیا، تو صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ ہٹ جائیں، کیونکہ یہ تو کسی کو نہیں چھوڑتا ہے، جو بھی آتا ہے اس کو یہ کاٹتا ہے اور اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، تو آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ یہ ایسا نہیں کرے گا، آپ لوگ پریشان نہ ہوں، میرے ساتھ ایسا نہیں کرے گا۔ اونٹ آیا اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اس نے سر رکھ دیا، گویا کہ وہ سجدہ کر رہا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے ساتھ وہ پیار محبت سے اپنا سر رگڑنے لگا، بڑی محبت کے ساتھ نے سر رگڑا، پھر آپ نے اس کو پکڑا اور پکڑ کر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس راہٹ کے ساتھ باندھا اور اس کو جوت دیا، اور وہ پھر پانی उसने निकालना शुरू कर लिया, बाग शराब हो गया। तो सहाबा इकराम ने ये हालत देखी तो सहाबा इकराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे, या रसूलल्लाह ये जानवर है और इसको इतना ख्याल है आपके मकाम का, आपके मर्तबे का, कि आपको सजदा कर रहा है, हम आपके ऊपर अपनी जान निछावर करने वाले हैं, अगर आप इजाज़त दें तो हम भी आपको सजदा करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी शरीयत में किसी इंसान को दूसरे इंसान के लिए ताज़ीमी सजदा करने की इजाज़त नहीं है, अगर ताज़ीमी सजदे की इजाज़त होती भी तो मैं मोहम्मद तुम्हें इजाज़त ना देता कि मुझे सजदा करो, मैं हर औरत को हुक्म देता कि वह अपने शोहर को सजदा करे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके साथ एक मिसाल भी बयान फरमाई कि आपने फरमाया कि अगर कोई औरत जो है वो अपने शोहर को राज़ी करना चाहती है और उसका हक उसके ऊपर कितना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल बयान फरमाया कि एक शोहर अगर बीमार हो जाता है, सर से लेकर पाँव तक उसके जिस्म पर फोड़े निकल आते हैं, ज़ख्म हो जाते हैं, पीप और खून रिसना शुरू हो जाता है उसके जिस्म से, औरत अगर और कुछ नहीं कर सकती तो वो पीप और खून जो अपनी ज़बान से चाट कर अगर उसको ख़त्म करना चाहे और उसको जो है वो जो रिसने वाला खून है उसको चाट ले, आपने फरमाया ये अगर वो काम कर लेती है तो फिर भी शोहर का हक फिर भी अदा नहीं हुआ। अब इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के ज़िम्मा ये लगाया कि वो अपने शोहर की इताअत करें और अपने शोहर की वो खिदमत करें। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो लोग ऐसे हैं कि अगर वो नमाज पढ़ते हैं तो उनकी नमाज सर से ऊपर नहीं जाती, आसमान पर नहीं, सर से ऊपर नहीं जाती। फिर फरमाया कि उनमें से एक वो शख्स है कि जो अपने मालिक से जो ग़ुलाम भाग जाता है, पुराने ज़माने में आका और ग़ुलाम होते थे, जो ग़ुलाम भाग जाता है मालिक की इजाज़त के बग़ैर, आपने फरमाया अगर वो नमाज़ पढ़ेगा उसकी नमाज सर से ऊपर नहीं जाएगी। दूसरी वो औरत जो अपने शोहर को नाराज़ करके रखती है और नाराज़ रखती है और परेशान करती है, आपने फरमाया कि वो अगर नमाज़ पढ़ेगी तो उसकी नमाज सर से ऊपर नहीं जाएगी। तो इबादत भी इससे मुतासर हो जाती है, नमाज पढ़ी तो वो भी कबूल नहीं हुई। सबसे पहला हक ये है कि अपने शोहर की इताअत करना। अब जो आयत मैंने पहले पढ़ी थी उसका दूसरा हिस्सा है, फस्सालिहातु क़ानितातुन हाफिज़ातुन लिलग़ैब बिमा हफ़िज़ल्लाह, आधा हिस्सा मर्दों के लिए। फिर नेक औरत के बारे में बताया कि सालिहा औरत कौन सी होती है, फरमाया क़ानितातुन, अपने शोहर की इताअत करने वाली जो औरत होती है वो सालिहा और नेक औरत होती है। और सालिहा और नेक औरत जो होती है वो इताअत इस अंदाज़ में करती है कि उसके अदम मौजूदगी में उसके माल की हिफाजत, उसके बच्चों की हिफाजत, उसके घर की हिफाजत और उसके जो है वो तमाम चीज़ों की हिफाजत, उसकी इज़्ज़त की हिफाजत, उसकी आबरू की हिफाजत, हर चीज़ की हिफाजत करती है। बेमा हफ़िज़ अल्लाह, जितना उसको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया और जिन जो अल्लाह ने हुक्म दिया उसके मुताबिक उसकी अदम मौजूदगी में सब चीज़ों की हिफाजत करती है। जिन लोगों को उसके शोहर ने मना किया कि मेरे घर में ना आए वो उनको नहीं आने देती, और जो उसने शरीयत के दायरे में उसको जायज़ जायज़ हुक्म दिए वो तमाम अहकाम को पूरा करती है, ये सालिहा औरत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन चीज़ें जो आपने पसंद फरमाई कि मुझे दुनिया में तीन चीज़ें पसंद है, तीसरी चीज़ आपने फरमाया कि अलमरअतु सालिहा, जो नेक औरत है दुनिया व माफी हा से मुझे वो पसंद है जो सालिहा अपने शोहर की इताअत करती है और उसका ख्याल करती है। इताअत में सबसे ज़्यादा और सबसे अहम बात जो है, جو نکاح کا مقصد ہوتا ہے، وجہ اعلیٰ بینکم مودتاً و رحمہ، دونوں کے درمیان محبت پیدا ہو جائے اور سکون کی زندگی گزرے، جس مقصد کے لیے نکاح ہوتا ہے اس مقصد کے لیے، تنہائی کی ملاقات کے لیے اگر شوہر اس کو بلاتا ہے، سب سے بڑا حق یہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عورت پر دو وقت بڑے تنگی کے ہوتے ہیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ پرانے زمانے میں ایک تنور ہوتا تھا اور پورے محلے کی روٹیاں اس تنور پر لگائی جاتی تھیں، ہر عورت آتی اپنا ایندھن اور لکڑیاں اس میں ڈالتی تھی اور اس کی باری آتی پھر اس میں لکڑیاں ڈالتی، پھر وہ تندور گرم ہوتا تھا، پھر اس ساتھ روٹی لگائی جاتی تھی، اور اگر نمبر گزر گیا تو پھر کافی دیر کے بعد دوبارہ نمبر آتا تھا اور اس میں ایندھن بھی ضائع ہوتے، لکڑیاں بھی ضائع ہوتیں۔ آپ نے فرمایا کہ کانت علی تنور، اگرچہ وہ عورت تنور کے ساتھ روٹی لگا چکی ہو، شوہر اگر اس کو آواز دیتا ہے اپنی ضرورت کے لیے، تنہائی کی ملاقات کے لیے، تو وہ اپنی روٹی تنور کے ساتھ لگی ہوئی چھوڑ کر، باری بھی چھوڑے، ایندھن بھی ضائع، سب کچھ چھوڑ کر اپنے شوہر کی ضرورت کو پورا کرے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ اگر وہ سواری پر سوار ہو چکی ہو، کہیں جا رہی ہے، بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، تیاری میں بڑا وقت لگتا ہے، تو کہیں جا رہی ہے اور آج کے زمانے میں وہ گاڑی پر بیٹھ چکی ہے، گاڑی نکلنے والی، دروازے بند ہو گئے، شوہر نے اس کو آواز دی کہ بھائی آ جاؤ، تو پھر اس وقت وہ اپنے سفر کو بھی چھوڑے، اپنی تیاری کو بھی چھوڑے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنے شوہر کی ضرورت کو پورا کرے۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اس کو کوئی شرعی عذر نہ ہو، اگر شرعی عذر ہے تو پھر انکار بھی کر سکتی ہے، لیکن شرعی عذر کوئی نہیں تو پھر اس کو ہر صورت میں اپنے شوہر کی ضرورت کو پورا کرا کے، یہ بھی گناہ سے بچے، وہ بھی گناہ سے بچے، اور نکاح کا جو اصل مقصد ہے وہ پورا ہو۔ ورنہ تو جو ہے وہ عورت جو ہوتی ہے وہ اپنے ماں باپ کے پاس ہوتی ہے، اپنے بہن بھائیوں کے پاس ہوتی ہے، اپنے رشتہ داروں کے پاس ہوتی ہے، وہ سب کو چھوڑ چھڑا کے شوہر کے پاس آتی ہے، تو نکاح کا جو مقصد ہے اس مقصد کے لیے جب اس کو بلائے گا، تو سب سے بڑا حق عورت پر یہ ہے کہ وہ پھر انکار نہیں کر سکتی، انکار کرے گی تو وہی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری رات فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، اللہ بھی ناراض رہتا ہے، جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر اس سے معافی نہیں مانگ لیتی اور اس کو سونے سے پہلے پہلے راضی نہیں کر لیتی، اللہ بھی اس سے راضی نہیں ہوتے اور فرشتے بھی اپنی لعنت اس عورت پر بند نہیں کرتے۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ سب سے اہم جو ضرورت ہے اس معاملے میں اطاعت کرے، اور باقی بھی شریعت کے دائرے میں اس کا شوہر اس کو جس بات کا حکم دیتا ہے اس کو جو ہے وہ اس کے مطابق اس کو زندگی گزارنی چاہیے۔ اور ایک حکم یہ ہے عورت کو کہ ہر پریشانی میں اپنے شوہر کا ساتھ دے، جب شوہر پر کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کاروبار میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے اور کوئی زندگی میں معاملہ ہو جاتا ہے، وہ اپنی بیوی سے شوہر شیئر کرتا ہے، آگے اس کو بتاتا ہے کہ یہ معاملہ ہے میرے ساتھ، اب بیوی بھی اس کا معاملہ سن کے وہ بھی رونا دھونا شروع کر دے، پیٹنا شروع کرے، وہ بڑا نقصان ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ اب کیا ہوگا ہمارا، تو بیچارہ باہر سے آیا تھا کہ گھر میں بات کروں گا تو کوئی تسلی ملے گی، تو گھر سے اور معاملہ شروع ہو گیا، اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا، تو یہ حکم نہیں ہے، اپنے شوہر کو تسلی دینی ہے۔ یہ ایک تجربے کی بات ہے کہ ساری دنیا اگر انسان کے پیچھے پڑ جائے نا، بیوی ساتھ ہو تو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، اگر بیوی ناراض ہے، بیوی ساتھ نہیں ہے، سارے دوست ہوں، پوری دنیا اس کے دوست ہو، گھر سے پریشانی ہے تو وہ اس کا دل سکون سے نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا رشتہ بنایا ہے، تو وہ جب گھر میں آئے اور اپنی پریشانی کا اظہار کرے کہ میں بڑا پریشان ہوں، یہ معاملہ ہو گیا، تو اس کو چاہیے کو کہے تو آپ اکیلے نہیں ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ بہت اچھے آدمی ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ایسا نہیں کرے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، جیسے بھی حالات آئیں گے، مشکل حالات آئیں گے، کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، پہننے کو کچھ نہیں ہوگا، کوئی کام نہیں ہوگا، میں آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ، کچھ معاملہ نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا آپ کو۔ اس کی مثال ہمیں ملتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی، آپ جبرائیل علیہ السلام کو نہیں جانتے تھے، انہوں نے آ کر آپ کو ملے اور دبایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، سب سے پہلے اپنے گھر میں حضرت خدیجہ کو بتایا کہ ایک شخص تھا، اس نے مجھے دبایا اور پسینے آئے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سردی لگ رہی ہے، بخار ہو رہا ہے، تو حضرت خدیجہ کو جب آ کر بتایا आपने फरमाया जम्मेलूनी जम्मेलूनी, मुझे कम्बल उड़ाओ, जल्दी करो मुझे कम्बल उड़ाओ, मुझे सर्दी लग रही है। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है, बताया कि एक शख्स आए थे, इस तरह मुझे दबाया है और ये मामला हुआ। उन्होंने कल्ला वल्लाहि ला युख्ज़ीक अल्लाहु अबदा, हरगिज़ नहीं, अल्लाह ताला आपको कभी ज़ाया नहीं करेगा, आप परेशान ना हो। आपने तो ऐसे काम किए हैं कि आप जैसे काम करते हैं इस तरह काम करने वालों को अल्लाह कभी ज़ाया नहीं करता, कभी रुसवा नहीं करता। आप तो मेहमान नवाज हैं, आप तो लोगों के बोझ उठाने वाले हैं, जो लोग कमा नहीं सकते आप उनको कमा कर खिलाते हैं, आप परेशानों को साथ देने वाले हैं, आपको कभी अल्लाह ज़ाया नहीं करेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लिया और वरका बिन नौफल के पास ले गई, जो तौरात के आलम थे, उनसे कहा कि ये मामला पेश है। उनका आपको जो है ये खुशखबरी है तौरात में कि अल्लाह ताला ने आपको नबी बना दिया है, जो जिब्राइल अमीन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास वही लेकर आते थे वो वही थे, और ये जो आपने मामला लिखा है ये तो तौरात में लिखा हुआ है। उनको ले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जिन पर वही नाजिल होती है उनको बीवी लेके जा रही हैं अपने वरका बिन नौफल के पास, और उनसे जाकर सारा मामला जो है वो पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली हो गई। तो घर वालों का ये हक बनता है कि शोहर अगर परेशान है तो परेशानी में उसको और ज़्यादा नहीं परेशान करना, और वो कहे कि जी मुझे ये परेशानी, कहे सौदा भी ख़त्म है, वो फलाना भी उधर भी जाना था, मैंने अम्मी के घर भी जाना था, तो वो पैसे नहीं है तो मुझे क्या होगा, फिर तो और परेशान होगा कि मुझे ये पड़ी हुई है और इनको ये पड़ी हुई है। तो उनके जिस मामले में परेशानी है उसका साथ देना है। उम्मे सुलेम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये हज़रत अनस की वालदा थी, और हज़रत अनस की वालदा थी, और इनके जो हज़रत अनस की वालिद थे वो फौत हो गए थे, और बाद में इन्होंने अबू तलहा के साथ निकाह किया। उम्मे सुलेम के साथ ऐसा हुआ कि उम्मे सुलेम जो है वो हज़रत अबू तलहा कहीं सफ़र पर चले गए तिजारत की गर्ज़ से, तो बच्चा उनका बीमार था। जब वो वापस आए तो उन्होंने वापस आकर बच्चे के बारे में पूछा कि बच्चे का क्या हाल है। उन्होंने कहा कि वो पहले से ज़्यादा आराम से है, हालांकि बच्चा फौत हो चुका है। अपने तमाम रिश्तेदारों को बताया कि हज़रत अबू तलहा जब वापस आएंगे तो मैं खुद उनसे बात करूँगी, कोई आदमी उनसे बात ना करे, आते ही उनको परेशानी की खबर नहीं सुनानी है। कहा पहले से ज़्यादा आराम से हैं वो, तो उन्होंने उस ज़माने में जो तैयारी हो सकती थी, जो अच्छे कपड़े थे, जो मेकअप था, जो उन्हें मुयस्सर थी चीज़ें, वो सब कुछ किया, तन्हाई की मुलाकात की उनके साथ, और मुलाकात के बाद फिर पूछा वो तलहा एक बात तो बताएं, अगर कोई किसी को अमानत दे और बाद में फिर उस अमानत का मुतालबा करे कि वो मुझे वापस कर दे तो आपका क्या ख्याल है। उन्होंने कहा तो वापस करनी चाहिए, वो तो है ही उसकी। तो उन्होंने कहा कि जो अल्लाह ताला ने हमें औलाद दी थी, अल्लाह ने दी थी, अल्लाह ने वापस ले ली, वो बेटा मेरा फौत हो चुका है। क्या आपने गुस्से में हो गया, आपने पहले क्यों नहीं बताया, आपने तैयारी भी की और मुलाकात भी की और सब कुछ किया, बताया क्यों नहीं। इसी गुस्से में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए और जाकर सारा मामला बताया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सुलेम के लिए दुआ फरमाई। अल्लाह ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस मुलाकात में, इस तन्हाई की मुलाकात में जो औलाद हो उसको मेरे पास लेके आना, अल्लाह ताला इससे आपको बरकत अता फरमाएंगे। इब्ने उयैना कहते हैं कि मैंने बाद में देखा अपनी ज़िंदगी में कि जब वो जो अब्दुल्ला बेटा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो लेकर गए, आपने उसको पहली खुराक आपने उसके मुंह में डाली, खजूर चबा कर उसके मुंह में डाली, तो इब्ने उयैना कहते हैं कि उसके आगे 9 बेटे पैदा हुए और 9 के 9 हाफिज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं। तो ये औरत का कितना बड़ा सब्र था, अपने शोहर को हौसला कितना बड़ा दिया, इस पर अल्लाह ताला ने नगद इनाम ये दिया कि 9 बेटे और 9 के 9 हाफ़िज़े कुरान, इब्ने उयैना कहते हैं मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं। तो एक बड़ा हक औरत के ज़िम्मा ये है कि शोहर जब परेशान होकर आए बाहर से तो उसने आगे अपनी लिस्ट तैयार न की हुई हो कि आपने क्या क्या करना है, वो अभी उसकी बात सुनी नहीं है और पहले से अपना जो है वो अपनी बातें और अपनी ज़रूरियात जो है उनको बता दी, जिस तरह हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला ने किया, और जिस तरह जो है वो उम्मे सुलेम का वाक़या मैंने अभी आपको सुनाया, जिस तरह उन्होंने अपने शोहर के साथ सलूक किया इस तरह का सलूक करना चाहिए, और ज़हनी तौर पर भी तैयार रहना चाहिए कि मेरे शोहर के आने का वक्त है, अभी वो आएँगे और उनको कपड़ों की ज़रूरत होगी और उनको जो है वो जूतों की ज़रूरत होगी, उनको खाने की ज़रूरत होगी। एक मामला अगर आपस में तय कर लिया जाए कि औरत को पता चल जाए कि मेरे शोहर को इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है और शोहर को पता हो कि बीवी को किन चीज़ों की किस वक्त ज़रूरत होती है, तो झगड़ा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। हमारे एक बुज़ुर्ग गुजरे डॉक्टर अब्दुल हई आरफी साहब, उनकी जब वो फोत हो गए तो उनके घर वालों से किसी ने पूछा कि आपकी ज़िंदगी कैसी गुजरी है, तो फरमाया कि कभी उन्होंने हज़रत ने मेरे साथ लहजा बदल कर भी बात नहीं की। लहजा बदल कर यानी गुस्से में कभी बात नहीं। उनका कि क्या बात है, वो तो बहुत अल्लाह वाले थे। उन्होंने कहा कि मेरा भी इसमें कमाल है, सिर्फ उनका नहीं, जब हज़रत घर में आते थे या घर से निकलना होता था मुझे उनकी सारी ज़रूरियात का पता होता था। झगड़ा किस वजह से घर में होता है, शोहर वॉशरूम में गया तो तौलिया नहीं या जूते नहीं या टूथपेस्ट नहीं या पानी नहीं या और कोई चीज़ नहीं, तो बस वो गुस्सा हो जाएगा, उसके पास टाइम कम होगा और वो चीज़ें नहीं होंगी। वो फरमाते हैं कि मुझे पता होता था कि हज़रत ने अभी कपड़े बदलने हैं, नहाना है, उनके नहाने से पहले पहले सारी ज़रूरियात पूरी, तो किस चीज़ पर झगड़ा होगा। निकलने का टाइम है तो उनको चाय की ज़रूरत होगी, वापस आ रहे हैं तो कपड़े बदलेंगे, उनको जूतों की ज़रूरत होगी, उनको खाने की ज़रूरत होगी, वो सारी ज़रूरियात मुझे पहले से पता होती थी। उसके बाद उनको बिस्तर की ज़रूरत है तो वो जो है वो मैं उनके लिए बिस्तर तैयार करती थी। तो सारी चीज़ें जब मुझे पहले से पता होती थी, उनको मेरी ज़रूरियात का पता होता था, तो कभी झगड़ा ही नहीं हुआ। तो अपने शोहर को समझें कि उसका मिजाज क्या है, वो किस चीज़ की उसको किस वक्त ज़रूरत है, जो अगर वो ज़रूरत पूरी की जाए तो झगड़ा नहीं होगा। इसी तरह एक चीज़ ये भी है कि मर्द हज़रात की ये ख्वाहिश होती है कि वो औरत जो है वो बंद संवर के रहे हर वक्त, तो शोहरों को भी चाहिए कि वो भी अपना ख्याल किया करें कि जब वो काम से आते हैं, मेहनत मशक्क़त करते हैं और फारिग होके आते हैं, तो वो भी ज़रा कपड़े बदल लिया करें। उसी पसीने के साथ लिहाफ़ में घुस गए तो वो तो दूसरे से तो उम्मीद रखते हैं लेकिन ख़ुद ख्याल नहीं करते इस चीज़ का। औरतें भी इस चीज़ का ख्याल करें, ये मर्दों का हक़ है उन पर कि अपने शोहरों के लिए ज़ेव ज़ीनत इख्तियार करें और अपने शोहरों के लिए तैयार हों और उनका शुक्र अदा करें और उनके लिए जो है वो तैयार हों, ज़बानी तौर पर भी उनका शुक्रिया अदा करें और इसी तरीके से अमली तौर पर भी उनका शुक्रिया अदा करें। और शोहर पर एक हक ये भी, अभी इसकी तफसील में मैं नहीं जाता, वक्त कम है, शोहर पर एक हक ये भी है औरत का कि शोहर उसकी हौसला अफजाई किया करे। ये हमारे अंदर बहुत कमी होती है। अगर उसने किचन अच्छा साफ़ किया है तो जाकर किचन देख कर उसकी हौसला अफजाई करें, आज आपने बहुत अच्छा काम किया है, ये आपने सफाई बड़ी अच्छी की है, खाना आपने बहुत अच्छा आज बनाया है, आपने ये काम, कपड़े बहुत अच्छे पहने, आपने फलां काम बहुत अच्छा किया, फलां काम बहुत अच्छा किया। उनकी हौसला अफजाई कामों में करनी है। अच्छा, हौसला अफजाई करेंगे तो फ़ायदा क्या होगा, एक छटांक ज़बान है ना, अगर इसको हरकत दी जाए तो वो आपके लिए और अच्छा बनाने की कोशिश करेगी। खाना अच्छा, सफाई अच्छी, बच्चों को कपड़े पहनाए बहुत अच्छे तरीके से, सलीके से आपने ये काम किया, ये घर में बर्तन आपने रखे माशाल्लाह, बड़े सलीके से आपने ये बर्तन रखे हैं और बड़े तरीके से आपने काम किया है। तीन मौक़े पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झूठ बोलना भी जायज़ है। तीन मौके ऐसे हैं, वैसे तो झूठ जायज़ नहीं है। एक ये कि जब दो बंदों के दरमियान सुलह करानी हो, दूसरा ये कि जंग के मौके पर दुश्मन को धोखा देने के लिए कोई बात कर दी जाए, तीसरा ये कि अपनी बीवी के सामने आदमी झूठ बोले। यानी झूठ किस तरह कि आप बहुत खूबसूरत हैं, मेरे नज़दीक आप बहुत खूबसूरत हैं, वो जैसी कैसी भी आपके लिए तो खूबसूरत है, आप जैसा कोई खाना बना नहीं सकता, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है, बहुत स्लीक है, मंद आप औरत हैं, बहुत अकल, सबसे ज़्यादा अकलमंद आप हैं। अब इससे आपको क्या जाता है, आप सर समझ, आपको यहाँ पे झूठ बोलने की भी इजाज़त दे दी। अगर इस तरह उसकी हौसला अफजाई की जाए तो ये उस औरत का हक है। देखो और उसकी कितनी बड़ी कुर्बानी है, अपने भाइयों को छोड़ा, माँ बाप को छोड़ा, बिरादरी को छोड़ा, सबको छोड़ दिया और एक शोहर के पास वो आ गई। अब शोहर भी अगर उसकी हौसला शिकनी करेगा तो उस पर क्या गुजरेगी, जिसकी बेटी है, जिसकी बहन है, जिसकी जो है वो रिश्तेदार है, वो सबको छोड़ छड़ा के आई एक शोर की खातर, और फिर अगले घर में आके उसके रिश्ते कितने बन जाते हैं, भाभी भी है, बहू भी है, बीवी भी है, सबकी ज़रूरियात जो है वो पूरी करती है। और एक हक उस पर ये भी है कि उसके साथ घर के काम में मदद भी करनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में कितना काम होता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में तो तीन तीन महीने तक चूल्हा नहीं जलता था, चूल्हे में घास उगाती थी, मिट्टी के चूल्हे होते थे, तीन तीन महीने चूल्हा नहीं जलता, न सालन न रोटी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी घर में काम के लिए हाथ बटाते थे, मदद करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ज़रा सोचें हमारे ज़माने में कितना काम है और तुम्हारा कितना लोड है। एक तो ये कि नाश्ता, फिर नाश्ते में सोच लें कितने आइटम होते हैं, कितनी चीज़ें होती हैं, फिर सबका नाश्ता अलग-अलग, बच्चों का अलग-अलग, उससे ज़रा बड़े उम्र के बच्चों का अलग-अलग, फिर बड़ों का अलग-अलग, फिर जो जल्दी जाने वाला है उसका अलग-अलग, फिर यूनिवर्सिटी वाले, कोई कॉलेज वाले, कोई 10 बजे जाने वाले, सबके नाश्ते भी अलग-अलग। वो ख़त्म होगा साथ घर की सफाइयाँ शुरू हो जाएंगी, फिर हमारे घर कितने बड़े बड़े। अच्छा, उसके बाद फिर जो है वो दिन का खाना, फिर शाम का खाना, फिर इसके साथ मेहमान, फिर उसमें 10-10 डिशें, फिर बर्तन का धोना, या फिर उसने नमाज भी पढ़नी, उस पर कितना लोड है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर का जो टूटा हुआ डोल होता था उसको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिलाई करते थे, कपड़ों की सिलाई भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, और जूते भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गांठ लेते थे, और बकरियों का दूध भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धो लेते थे। और खाने पकाने का क्या हाल है कि उस घर में खाना पकता ही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ लाए तो देखा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ख़ातून जन्नत वो रोटियाँ पका रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे एक पेड़ा लिया, आटा लिया, और गोर पेड़ा बनाकर उनको दे दिया। उन्होंने फिर रोटी लगाई तंदूर के साथ, और तंदूर के साथ रोटी लगा ली और सारी रोटियां पक गई, और जो आपने पेड़ा बनाया था वो गोल पेड़ा बना के दिया था, उससे पानी रिस रहा है, मुसलसल आग लग रही है और पानी रिस रहा है। वो उसकी इंतज़ार में खड़ी रही। काफ़ी देर के बाद आकर बताया कि अब्बा जान, वो जो रोटी आपने लगाई थी, पेड़ा आपने दिया था, उसके अंदर आग के अंदर भी पानी निकल रहा है, वो तो पकी नहीं रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ लग जाएं उसको आग नहीं छू सकती। कितने प्यार की बात है। और फिर बेटी भी ऐसी अजीब, काफ़ी दिनों के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में तशरीफ़ लाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो भी गरीब थे, सारी ज़िंदगी ज़कात फ़र्ज नहीं है हज़रत अली पर, वो कहीं से कोई मजदूरी करके लाए और तीन रोटियों का आटा लाए, तीन रोटियां घर में बनी, एक हज़रत अली के लिए रख दी और एक अपने लिए, और एक रोटी अपने चादर के जो है वो कोने में बांध कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ला रही हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रोटी देखी और उसको तोड़ कर मुँह में डाला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फातिमा, मुझे अल्लाह की कसम है, 3 दिन से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह में रोटी नाम की कोई चीज़ नहीं डाली, मैंने कुछ नहीं खाया 3 दिनों से। तो ये कितनी प्यार और मोहब्बत की बातें हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों के साथ कैसे रहते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों से प्यार मोहब्बत से ऐसे रहते कि मोहब्बत के नाम रखे थे। हज़रत आयशा का नाम हुमैरा, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको आयशा के बजाय आयश कहते थे, आयश हमारा, और प्यार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बुलाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको टाइम देते थे, उनसे बात करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आज हमारे पास टाइम नहीं है, किसी हर चीज़ के लिए टाइम है और उनके लिए टाइम नहीं है। ये तो मर्दों के हुकूक हैं जो औरतों के ज़िम्मा हैं, जो औरतें मर्दों के हुकूक पूरे करेंगी। अब जो है वो कुछ ऐसे हुकूक हैं जो मर्दों के ज़िम्मे हैं, वो औरतों के हुकूक पूरे करेंगे। उनमें से पहला हक ये है कि वो अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का काम घर में शुरू करेंगे और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे बेहतरीन वो आदमी है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है, घर वालों के लिए बेहतरीन है। और आपसे पूछा गया, या रसूलल्लाह ये बताएं कि औरतों के हमारे ऊपर क्या हक है, आपने फरमाया जो खुद खाओ उनको भी वो खिलाओ, जो खुद पहनो उनको भी पहनाओ, उनके मुंह पर ना मारो, उनको तकलीफ़ ना पहुंचाओ, बदगुमानी उनके बारे में ना करो। अपने कपड़े जैसे बनाते हैं जितने कीमती, उतने कीमती कपड़े उनके भी बनाओ। यानी कि अपने 10-10 जोड़े और बीवी को कहा कि बस पिछले साल जो बनाए थे उसी पर गुजारा करो, और खुद जो खाते हैं उनको खिलाओ। घर में दाल साग या बैंगन दे के चले गए और ख़ुद अपने दोस्तों के साथ पेशावर जा रहे हैं कबाब खाने के लिए, उनका भी तो जी चाहता है। उनको घर में आके बड़े मज़े से बताया, जी हमने कबाब खाया, बड़े मज़े का था, मछली खाई है, बड़े मज़े की थी। घर वालों का कि बस गुजारा करो इस दाल साग पर, घर में तो यही चीज़ें होती है ना, बस गुजारा करो। तो ये जो खुद खाया उनको नहीं खिलाया, जो अच्छा कपड़ा खुद पहना उनको वो नहीं पहनाया। फिर बदगुमानी उनके बारे में ना करो, उनको तकलीफ़ ना पहुँचाओ। तो ये बड़ा हक है एक शोहर के ज़िम्मा के वो अपनी बीवी को और अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाए। वो चीज़ें जो शरीयत के ख़िलाफ़ हैं अगर बीवी में और बच्चों में हैं तो वो उसकी कोशिश करेगा, ऐसी महफिल में लेके जाएगा, ऐसी सोहबत में उनको लेके जाएगा, और ख़ुद कोशिश करेगा कि गीबत ख़त्म हो जाए, जुल्म ज़्यादती ख़त्म हो जाए, बदगुमानी ख़त्म हो जाए, हसद ख़त्म हो जाए। और ये सारी चीज़ें ख़त्म करने के लिए उसकी मुआवनत करेगा, उसको ऐसी महफिल में ऐसी जगह पे लेके जाएगा, ऐसा माहौल मुहैया करेगा कि वो ख़ुद भी जहन्नम से बच जाए तो जो है उनको भी जहन्नम से बचाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मर्द 4 औरतों की वजह से जहन्नम में जाएगा। खुद कामयाब हो गया, नमाजें भी ठीक, मामलात भी, सब कुछ, लेकिन बीवी पर उसने मेहनत नहीं की, ये पहला हक उसका अदा नहीं किया, तो बीवी उसका गरेबान पकड़ेगी। वो कहेगी कि खुद तो ये अच्छी महफिलों में जाते थे, मुझे इन्होंने घर के काम पर सिर्फ लगाया, कपड़े मुझसे इस्त्री करवाए और पढ़ाई में डिग्रियां मुझसे इन्होंने ली है, मैं बेटी की हैसियत से थी, जो मुझे हुक्म दिया मैंने वो डिग्रियां लेकर इनको दिखा दी। अगर ये मुझे कुरान पढ़ने पर लगाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने पर लगाते, मैं वो भी कर देती। एक खुद तो सारे अच्छे काम करते, मुझे नहीं करने दिया, बेटी पकड़ेगी, बहन पकड़ेगी, माँ पकड़ेगी, बीवी पकड़ेगी। लिहाजा उनको सबसे पहला हक उनका ये है कि उनको ऐसा माहौल मुहैया किया जाए कि जिस माहौल में वो जो है वो खुद भी अच्छी बन सकें और अपने बच्चों की तरबियत भी अच्छे तरीके से कर सकें। औरतों का एक हक ये है कि मामूली मामूली बातों पर उनकी गिरफ्त ना की जाए। छोटे मोटे नुकसान हो जाते हैं ना, घर में बर्तन टूट गया, कुछ और मामला हो गया, छोटी छोटी बातों पर उनकी गिरफ्त नहीं करनी है और उनको नज़रअंदाज करना है, उनको बर्दाश्त करना है, उस पर सब्र करना है, और जो उनके अंदर अच्छाइयां हैं उन अच्छाइयों पर नज़र रखनी है। हर घर में एक चीज़ को तरजीह होती है, बाज़ घरों में खाने को तरजीह होती है, खाना पीना अच्छा होना चाहिए, कपड़ों की सफाई की कोई परवाह नहीं, और बाज़ घरों में ये होता है कि कपड़े अच्छे पहनने हैं, खाने की और सफाई की कोई परवाह नहीं है। बाज़ घरों में तरजीह इस तरह की होती है कि सफाई खूब रखनी है मेहमानों के सामने और लोगों के सामने, कपड़ों की कोई परवाह नहीं और खाने की भी कोई परवाह नहीं। तो जिस चीज़ में औरत दिलचस्पी ले रही है कम से कम उसमें तो हौसला अफजाई हो। ये ना कि वो सफाई करती है और हम उसको कहें कि भाई तुमने खाना भी नहीं बनाया और कपड़े भी नहीं तैयार किए, और जो सफाई की उसने भी हौसला शिकनी कर दी हो तो वो भी ख़राब हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा और उसमें इख्तलाफ हो जाएगा। तो इसलिए जो अच्छा काम है उसकी हौसला अफजाई उसकी करनी है और दूसरे कामों के साथ साथ तरगीब देनी है, ताकि जिस तरह वो सफाई का ख्याल करती हैं खाने का भी ख्याल करें। जो अच्छी चीज़ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारी चीज़ें तो उसमें बुरी नहीं हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं उनकी हौसला अफजाई करो और जो बुरी चीज़ें उनको नज़रअंदाज करो, उनको तरीके से उनको भी अच्छा करने की कोशिश करो। इस तरह एक जो है वो औरत के जो हक है वो मर्द के ज़िम्मा ये है कि उसके नान नफका की ज़िम्मेदारी उस पर है। व बिमा अनफकू मिन अमवालिम, जितना मुयसर हो। ये नहीं कि उसको रोज़ाना बर्गर और शवरमे रोज़ाना खिलाने, नहीं, जब हो तो खिला दे, जो खुद खाते हैं वो उसको खिलाए, खुद रोटी खा रहा है उसको भी रोटी खिलाए, खुद नान खा रहा है उसको भी नान खिलाए, खुद अगर जो है वो अच्छा सालन खा रहा है उसको भी वो खिलाए, जो खुद खाए वो उसको खिलाए, जो जैसा खुद पहने उसको भी ऐसा ही पहनाए। और इसी तरीके से अगर घर में इख्तलाफ़ हो जाता है तो शरीयत ने जो हक बताया है, जो तरीका बताया, उस तरीके से उसको सबसे पहले उसको फ़ाइज़ू हुन्ना, उसको वाज़ो नसीहत करे कि भाई आप इसको ठीक कर लें, और कोई हदीस सुनाई कुछ किया वो उसको वाज़ो नसीहत करे। फिर भी अगर वो उससे बाज नहीं आती है तो उसका बिस्तर अलहदा करे, لیکن بستر علیحدہ کرنے میں نہ خود گھر چھوڑے نہ اس کو گھر سے نکالے، گھر کے اندر ہی یا کمرہ بدل لے یا کمرے کے اندر اپنی چرپائی اور بیڈ علیحدہ کر لے، اس کے لیے یہ بڑی سزا ہے عورت کے لیے۔ اگر اس سے بھی باز نہیں آتی تو وضربوہن، تیسرے نمبر پہ مار ہے، لیکن مار بھی طریقے کی ہے جو شریعت نے بتائی ہے۔ مارنا کیسے ہے؟ مارنا اس طریقے سے ہے کہ منہ پر نہیں مارنا ہے، ڈانٹ بھی نہ پڑے، یعنی اس کا نشان نہ پڑے، نہ تھپڑ کا نہ ڈنڈے کا۔ اور ڈنڈا جو ہے وہ اگر اس کے ساتھ مارتا ہے، اللہ نہ کرے کہ وہ ہاتھ سے زیادہ لمبا نہیں ہونا چاہیے، کونی سے لے کر یہاں تک ہو، اور مارتے ہوئے کندھے سے اوپر ہاتھ نہ لے کے جائے، یہ ساری شرائط کے ساتھ اس کو ادب سکھانے کی نیت سے۔ تو اس کو گھر سے نہ اس کو نکالے نہ خود شریعت کے حدود سے جو باہر نکلے گا وہ پھر گناہگار ہوگا۔ تو یہ مرد کے ذمہ ہے، اختلاف گھر میں ہو جاتا ہے، لیکن اس کو شریعت کے مطابق جو ہے وہ اس کو اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طریقہ سے اگر عورت کی کسی کھیل کے ساتھ، کسی چیز کے ساتھ دلچسپی، انسان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں کہ حبشی باہر کھیل کھیل رہے ہیں تو آپ نے ان کو دیکھنے کو کہا، یا رسول اللہ دیکھنا ہے میں نے، آپ نے فرمایا کہ میرے پیچھے کھڑی ہو جاؤ۔ حضرت عائشہ کو پیچھے کھڑا کیا، اور ان حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میری ٹھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر تھی اور میں وہاں سے حبشیوں کو کھیل دیکھ۔ اس زمانے میں کھیل کیا ہوتا تھا؟ کھیل یہ ہوتا تھا کہ تیر اندازی ہوتی تھی یا گھوڑ سواری ہوتی تھی یا وہ گتکا کھیلتے تھے، وہ ڈنڈوں کے ساتھ جہاد کی تیاری ہوتی تھی۔ اس سے کوئی یہ نہ نکالے کہ کرکٹ دیکھنا شاید جائز ہے یا اور کوئی ایسے کھیل دیکھنا جائز ہے، اس وقت پردے کا حکم بھی نہیں آیا تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر ٹھوڑی رکھ کر کافی دیر کھڑی رہی، تو پھر میں پیچھے ہٹی، میں تھک گئی، آپ نے فرمایا کہ عائشہ اور دیکھنا ہے؟ میں نے کہا جی اور دیکھنا ہے۔ کہتی ہیں میں دیکھتی رہی کہ آپ میرے لیے کتنی دیر کھڑے ہوتے ہیں، پھر میں نے تھوڑا سا آرام کیا، پھر کھڑی ہو گئی، میں آخر کار تھک ہار کے پیچھے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں تھک گیا ہوں بس کرو، یعنی ان کی کھیل میں دلچسپی تھی تو آپ نے اس میں ان کا ساتھ دیا۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی اپنے گھر والوں کو باقاعدہ ٹائم دیتے تھے، ہمارے پاس تو بات سننے کا ٹائم بھی نہیں ہوتا نا، ہم کہتے ہیں ویسے ہی بولتی رہتی ہیں، بس چھوڑو ان کی بات ہی نہیں سننی ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد، اور ہماری ایک ایک بیوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں، 11 کو روزانہ 2 ٹائم، فجر کے بعد اور عصر سے مغرب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ٹائم دیتے، سب کے پاس جاتے تھے، ان کی ضروریات پوچھتے تھے اور ان کی ضرورتیں پوری کرتے تھے۔ ہماری ایک بیوی ہے، اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، دوستوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، گاہکوں کے لیے ٹائم ہے، سب لوگوں کے لیے ٹائم ہے، لیکن بیوی کے لیے ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ ماں باپ کے لیے ٹائم ہے، بیوی کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں، نہ بات سننے کے لیے ٹائم ہے۔ آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ ایک حدیث مبارکہ بخاری شریف میں حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی سنائی، 11، انہوں نے فرمایا کہ 11 عورتیں تھیں، اس حدیث کا نام ہے ابو زرعہ والی حدیث، 11 عورتیں تھیں، انہوں نے آپس میں اجتماع کیا، اکٹھی ہوئی، آپس میں مشورہ کیا کہ آج کوئی عورت بھی اپنی بات چھپائے گی نہیں اپنے شوہر کے بارے میں، اس کا شوہر بخیل ہے، سخی ہے، سخت طبیعت کا ہے، نرم طبیعت کا ہے، اس کو مارتا ہے، کیا کرتا ہے، سب نے سچ سچ بتانا ہے آج۔ تو وہ 11 عورتوں کی کہانی حضرت عائشہ کو سنا رہی ہیں، حضرت عائشہ سنا رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے بیٹھے ہیں، ایک کی بات کی، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، 11 عورتوں کی پوری کہانی سنانے کے بعد ابو زرعہ کا نمبر آیا۔ تو ابو زرعہ جب انہوں نے کہا کہ ابو زرعہ کی جو بیوی تھی ام زرعہ، اس نے کہا کہ میرا شوہر بہت اچھا تھا، مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا، ہمارا وقت جو گزرا ہے بڑی محبت کے ساتھ ہمارا آپس میں وقت گزرا ہے، لیکن آخر میں اس کی آنکھوں میں کوئی اور عورت بھاگ گئی تو اس نے مجھے طلاق دے دی۔ جب کہانی ختم ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھایا، آپ نے فرمایا کہ عائشہ، میں تمہارے ساتھ ایسے ہی محبت کرتا ہوں جیسے ابو زرعہ ام زرعہ سے محبت کرتے تھے، لیکن یاد رکھو میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، میں نہیں طلاق دوں گا، انہوں نے طلاق دی، میں نہیں دوں گا۔ آپ اندازہ فرمائیں، ہمارے پاس بات سننے کے لیے ٹائم نہیں، اچھا اچھا ٹھیک ہے، ہو جائے گا ہو جائے گا، آدھی بات سنی، نہ خود سمجھ آئی نہ اس کو کچھ سمجھ دیا کہ اس نے کیا بات کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکائے بیٹھے، پوری 11 عورتوں کی کہانی سنی، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نتیجہ بتایا کہ میں تمہارے ساتھ کتنی محبت کرتا ہوں۔ تو خدا کے لیے اپنی بیویوں کو، اپنے گھر والوں کو ٹائم، یہ ان کا حق ہے، वो पकड़ सकती हैं कि मैंने सब कुछ इसके लिए छोड़ा था और इन्होंने मुझे वक्त भी नहीं दिया और मेरे साथ बात करना गवारा नहीं, क्योंकि ये शायद वैसे ही फजूल बात करती रहती है। एक उनका हक मेहर अदा किया जाए। हक मेहर में जो गलतियाँ होती हैं, या तो बहुत ज़्यादा रखा होता है लोगों को दिखाने के लिए और देने का इरादा नहीं होता, या फिर बहुत कम रखते हैं, 32, 120 इस तरह रख देते हैं। कम से कम जो हक मेहर है आज के ज़माने में 3,675 रुपये, इससे कम पर हक मेहर होता ही नहीं है, 10 दिरहम होते हैं कम से कम। तो या बहुत ज़्यादा रखा जाता है या बहुत कम रखा जाता है, और देने दिलाने का कोई मामला नहीं होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस नीयत से हक मेहर ज़्यादा रखता है कि नहीं देना है, क़यामत के दिन उसको जानियों में खड़ा किया जाएगा। ये औरत का हक, वो आतुन निसा सदकातिहिन निहला, उनका जो हक है महर है उनको अदा करना है, वो कर्ज है मर्द के ज़िम्मा, वो मुतालबा भी कर सकती है कि उसका हक महर उसको दिया जाए। तो ये मैं शॉर्ट शॉर्ट में बातें बता रहा हूँ, तो इन बातों का ख्याल करना चाहिए। और कभी कभी अपनी ज़बान को हरकत दे के इजहार मोहब्बत भी, दिल में मोहब्बत है तो ज़बान से भी कभी कभी इजहार कर दिया करें ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा को देखा, आप घर में तशरीफ़ लाए तो वो एक प्याले में पानी पी रही हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आवाज़ या आयश आवाज़ दी। आपने फरमाया कि जिस प्याले में, जिस जगह पर आपने मुंह लगा के पानी पिया है, मुझे वो जगह बताओ, मैं भी उधर ही लब लगा कर पानी पीऊँगा। और कभी हज़रत आयशा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ लगा रहे हैं, अगर घर में कोई घर वाली को बापर्दा माहौल में अगर उसको कोई चीज़ पसंद है, कोई खेल पसंद है, तो थोड़ा बहुत खेल खेल लेना भी उसमें कोई हर्ज नहीं। आपने दौड़ लगाई, हज़रत आयशा आगे बढ़ गई, दोबारा आपने दौड़ लगाई, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए, आपने फरमाया कि आप बदला पूरा हो गया। तो घर वालों के साथ ये उनका हक है कि उनको पूरा पूरा टाइम दिया जाए, उनकी बात सुनी जाए, और बात सुनकर उसका जवाब भी देना चाहिए। बाद लोग बात सुनते सुनते अच्छा हो जाएगा, बस ये जवाब अच्छा कर लेंगे ना, कौन सा हो गया अभी इतनी जल्दी है, ये तरीका नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा जवाब दिया, तो माकूल और बेहतरीन और अच्छा जवाब देना चाहिए, जो एक मुअज़्ज़ज़ आदमी का जवाब होता है। औरतों के अंदर नरम मिजाजी होती है, उनको जिस्मानी तौर पर अकली तौर पर अल्लाह ताला ने नरम पैदा किया है, यही उनका हुसन है। टेढ़ी पसली से पैदा, पसली जो टेढ़ी होती है, सीधी पसली अच्छी लगती है या टेढ़ी अच्छी लगती है, उसका हुसन तो उसी टेढ़ेपन में है। बात बात पर रो पड़ना, हम गुस्सा हो जाते हैं और जी बात बात पर रो पड़ती है, तो उसका मिजाज में ये चीज़ है, बात बात पर रोना। अपना घर छोड़ के आई है, माँ बाप को छोड़ के आई है, उसको याद आता है, बात बात पे अगर रो पड़े तो इससे गुस्सा नहीं होना है, ये तो उसकी तबीयत में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी वो जो नरम मिजाजी है, वो जो कमज़ोरी है, उसका भी ख्याल फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र पर जा रहे थे, तो ऊँटों पर वो पुराने ज़माने में होदे जो होते थे, वो कजावे होते थे, उसमें उनको औरतों को बिठा देते थे, पर्दा भी होता था और सफ़र भी साथ करती थी। और सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ख्वातीन को और घर वालों को साथ ले जाया करते थे। तो एक सहाबी है, उनका नाम है अनजशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने मुहार पकड़ी हुई है और ऊँटों को भगाते हुए जा रहे हैं, वो औरतें ऊपर हचकोले खा रही हैं, जंप लग रहे हैं। आपने उनको रोका, भाई रुक जाओ। आपने फरमाया कि इन आबगीनों का ख्याल करो, शीशों से बनी हुई चीज़ों का ख्याल करो, इसमें नरम मिजाज और नरम तबीयत की औरतें मौजूद हैं, हमारे घर वाले हैं, ख्याल करो, ये हचकोले इतने खा रहे हो, गाड़ी इस तरह चला रहे को बंदा के, औरतें बेचारी डर भी नहीं, कहता मेरे पास टाइम नहीं है, उसको पसीने आ रहे हैं और वो चलाए जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, तो इस तरह नहीं करना है भाई। उनकी जो नरम मिजाजी है और उस जिसमें अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया है, उस नरम मिजाजी का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्याल फरमाया। अच्छा, घर वाले बीमार हो जाए ना, तो उनकी तीमारदारी भी करनी है। अच्छा, किसी आदमी को जो बीमार हो, तीमारदारी करने का कितना सवाब है, 70,000 फरिश्ते सुबह को तीमारदारी की, शाम तक 70,000 फरिश्ते उस बंदे के लिए दुआ मगफरत करते हैं। ये हम समझते हैं कि कोई माले वाला बीमार होगा, कोई साथ वाला दुकानदार बीमार होगा, तो उसकी तीमारदारी करनी है। माँ बाप घर में पड़े हुए हैं, बीवी घर में बीमार पड़ी हुई है, हम सुबह सवेरे उसको नहीं पूछ सकते कि आपका क्या हाल है, आपकी रात आपकी कैसी गुजरी है, जाते हुए फिर उसको पूछ लिया, दिन को 10 बजे फिर फ़ोन कर लिया। अच्छा, जितनी दफ़ा उसकी तीमारदारी होती रहेगी, 70,000 फरिश्ते दुआए मगफरत के लिए उसके साथ तैयार हैं, मगर नहीं करते। बीवी बीमार है, उसको नहीं, शाम को जाऊँ, अच्छा मैं भी काम पर हूँ, मैं कोई बात इस टाइम नहीं सुन सकता, आप नहीं सुन सकते, कौन सुनेगा। माँ बाप को बताए फिर आप नाराज़ होते हैं कि जी मैं दवाई नहीं ले लेकर दे सकता, आपको उसको क्यों बताते हैं घर में बीमारी का क्यों बताते हैं। तो तीमारदारी करने का स्वभाव है, तो इसलिए माँ बाप की भी तीमारदारी करें। जो घर में लोग बीमार होते हैं उनकी तीमारदारी करने का भी उतना ही स्वभाव है जितना बाहर वाले लोगों का है। और इस तरह जो है वो हदिया देना, ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हदिया भी हमने शायद रखा हुआ है कि ये मस्जिद के इमाम के लिए होता है और जो हाजी साहब होते हैं उनके लिए होता है या बुज़ुर्गों के लिए होता है, घर वाले को कोई हदिया नहीं देता है। आपने फरमाया कि तहादु तहाबु, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हदिया दो, तो हदिया जो है वो घर वालों को भी दिया जा सकता है। हर चीज़ लड़ भिड़ के नहीं कि मेरे लिए मुझे कपड़े भी लेके दें, मुझे जूते भी लेके दें, मुझे फलां भी चीज़ लेके दें, हर बात झगड़े से ना हो, ले तो वो भी लेती हैं। तो अगर हदिया के तौर पर उनको अचानक आप उनके लिए हदिया लें, कपड़े ले आएँ, जूते ले आएँ, कोई और चीज़ ले आएँ, तो अगर इस तरीके से आप लाएंगे तो इंशाल्लाह इससे मोहब्बत पैदा होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हदिया देने से मोहब्बत पैदा होती है। तो हुकूक तो भाई और भी बहुत सारे हैं लेकिन वक्त हो चुका है, तो जो हुकूक हमने बयान किए हैं अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है, तो अब जाकर घरों में अपने हुकूक का मुतालबा नहीं करना है। बीवियाँ अपना मुतालबा ना करें, मर्द अपना मुतालबा ना करें, बल्कि वो ये करें कि हर कोई अपना अपना हक अदा करना शुरू कर ले, दूसरे का खुद ब खुद ही अदा हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जो हमने बयान किए सारे यही नहीं हैं, इसके अलावा और भी हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। थोड़ा सा वक्त ज़्यादा हो गया, मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ, तो माज़रत चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।